الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة الكهف کو مکمل کریں گے، آیت نمبر 83 سے 110 تک. دیکھتے ہیں ہم تفسیر، اور آج ہم چوتھا قصہ دیکھیں گے سورۃ الکہف میں. اور اس سے پہلے ہم نے جو تیسرا قصہ دیکھا تھا، آپ نے اس کے اوپر کچھ سوچ بچار کی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو چند واقعات ہیں جو اس قصے میں بتائے گئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ ان میں کتنی بڑی بھلائی تھی، کتنی بڑی خیر تھی. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ کتنے ہی سارے واقعات میری اور آپ کی زندگی میں چل رہے ہوں گے اس وقت، جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور نہ شاید کبھی جان بھی نہ سکیں کہ ان میں کتنی خیر اور بھلائی ہے، لیکن ہمیں وہ اتنی بری باتیں لگتی ہیں، اور اتنا ان کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کتنا شر ہے اس میں. یعنی آپ سوچیں کہ اس واقعے میں، اس قصے میں، ایون اتنی بڑی بات، جس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ اولاد کی دنیا سے چلے جانا، والدین کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کسی انسان کے لیے، اور اس میں بھی کوئی خیر تھی. تو اگر اس میں کوئی خیر ہو سکتی ہے، تو باقی جو واقعات ہیں ان میں کیسے نہیں ہوگی؟ اس میں کتنا بڑا سبق ہے، تقدیر کے فیصلوں کی سمجھ نہیں آئے گی ہمیں، کیونکہ یہ علم اللہ کے پاس ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا. دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام کہ جیسے اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کے پاس بھی یہ علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور بے چین ہونے لگتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں جن کا علم میرے پاس نہیں ہے. بس ہمیں یہ کہنا چاہیے، والا عاصی لک امر، اللہ میں تیری کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گی، بس. اب دیکھیں، پہلا جو قصہ تھا اس میں تو شاید چانس ہے کہ کوئی کشتی والوں کو سمجھ آ ہی گئی ہو، کہ بعد میں ہو سکتا ہے ان کو پتہ چل گیا ہو کہ بھئی ہم بچ گئے ہیں، تو اس کے اندر کتنی بڑی خیر تھی کہ ہماری کشتی میں سوراخ تھا. مگر جو بچے کی وفات کا ہے یا جو دیوار کا کھڑی کرنے کا ہے، وہ تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلا ہو دیوار کھڑی ہوئی ہے، کسی نے آ کے اس کو صحیح کیا ہے. یا جو وہ والدین ہیں، ان کو ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ ماں روتی رہی ہو کہ میرا بچہ کیوں چلا گیا. تو یہ بچہ اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور پوری کمیونٹی کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا تھا، کیونکہ جب کوئی انسان سرکش نافرمان ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسی کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس کی آخرت تو بگڑنی تھی، اس کے والدین کی بھی بگڑ جانی تھی، سوسائٹی کی بھی بگڑ جانی تھی. تو ہم قدر نہیں کرتے، اگر ہم جان جائیں تو شاید شکر ہی ادا کر لیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں. اور ایک بہت اہم ہمیں جو بات اس میں پتہ چلی تھی، ہو سکتا ہے آپ نے سوچی ہو اس چیز کو، کہ جو بھی خیر ہے نا، اور وہ ڈیلے ہو رہی ہے، ابھی تک نہیں مل رہی مجھے، تو اس کے اندر بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے راز چھپایا ہوتا ہے، اس کے ڈیلے ہونے میں، کسی چیز کے بھی ڈیلے ہونے میں. جیسے کوئی کہہ دے کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی، بہت ساری لڑکیوں کے ای میلز آتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، بہت پریشان ہے، والدین پریشان ہیں، کیا کریں. تو یا کوئی کوئی کہتا ہے کہ میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، کب سے دعائیں کر رہی ہوں، کیوں نہیں ہو رہی. یا کوئی جاب کے لیے، یا کسی کا بچہ بگڑ گیا تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں یہ صحیح ہو رہا، کیوں اس میں ڈیلے آ رہا ہے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی، اس دیر ہونے کہاں سے یہ پتا چلا؟ ہاں، یہ جو تیسرا واقعہ تھا उसमें उन बच्चों को, उन यतीम लड़कों को, उन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किल में जिंदगी गुजारी, उनको खजाना तो दफन था, तो पता नहीं कितनी गरीबी मिस्कीनी के अंदर जिंदगी गुजारी हो उन्होंने, कितने मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारी हो। तो वो सोचते हो कि हाय पहले ही मिल जाता हमें खजाना, ये तो हमें इतनी देर बाद मिला। तो जो भी खैर है ना, उसका डिले होना ये अल्लाह ही जानता है कि क्यों हो रहा है, मगर ऐसे मामलात में भी हमारा क्या हाल हो जाता है ना। और फिर वो काना अबू हुमा सोलेहा जो था ना, वो एक बाप ही था जो नेक था। तो कोई लोग कहते हैं कि भाई कोई आदमी कह सकता है मेरी बीवी नेक नहीं है, कितना बच्चों पे ऐसा असर होता है, या औरत कहती है कि काश मेरा शौहर नेक होता तो ये ना होता। तो आप ये देखें कि दोनों तो नेक हों तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, तो माँ या बाप आप उनको बदल तो नहीं सकते, तो मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने यहाँ एक की बात की है, अबू हुमा, तो बाप हो या माँ हो, एक ही खानदान में से एक भी अगर सही हो जाता है तो इसका मतलब वो भी काफी है। यहाँ पे बाप है, हो सकता है किसी जगह माँ नेक हो, ठीक है। तो नेकी में कभी भी इस चीज को सोचे नहीं कि जो है ना इसका क्या फायदा, ये होना चाहिए था नेक, मेरे नेक होने का कोई फायदा नहीं, नहीं ठीक है। आप उसके साथ डील कर रहे हैं जो बड़ा कदरदान है, तो आपकी नेकी को आपकी नस्लों में चला देगा। और देखिए आप यहाँ पे तस्तोतिया और तस्तिया दोनों लफ्ज आए हैं, ये आपने नोट किया कि एंड में जो 82 आया था इसमें तस्तिया आया है, और इससे पहले 78 में मालम तस्तोतिया आया है, हालांकि दोनों का माना एक ही है। जैसे हम कह देते हैं ना कैन नॉट को कैंट, इज नॉट को इजंट, तो जरा शॉर्ट कर देते हैं ना, या मैथमेटिक्स को मैथ, बायोलॉजी को बायो, तो कोई फर्क नहीं है दोनों में, एक शॉर्ट एक लॉन्ग है ना। लेकिन जब मूसा को भी समझ नहीं आ रही थी, तो ये अभी खिजर अलैहि सलाम के लिए फ्रस्ट्रेटिंग बात थी, तो तस्तोते आया, और बाद में जब समझ आ गई, खुल गई, बात आसान हो गई, तो तस्ते आया, क्योंकि जहां पे भी अरबिक के अंदर एक भी लेटर का इजाफा होता है ना, उस चीज में शिद्दत आ जाती। तो और उम्मीद है कि आपने अदब भी सीखा होगा अल्लाह ताला का, कि कोई भी बुराई शर जो पहुंचती है उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ ना किया करें, ठीक है। तो आज का लेसन देखते हैं आयत नंबर 83 से, वयसअलूनक अन ज़िल्क़रनैन, और वो सवाल करते हैं आपसे ज़िल्क़रनैन के बारे में। यहूदियों ने आखिरी जो सवाल किया था नबी अलैहिस्सलाम से, वो क्या था कि आप उस ट्रेवलर के बारे में बताएं जिसने मशरिक से मगरिब तक ट्रेवल किया, तो उसके बारे में हमें बताएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अस्हाबे कहफ का बताया, और आपको पता है रूह के बारे में सूरह इसरा में आ चुका है, और अस्हाबे कहफ के बाद फौरन ज़ुल्करनैन का किस्सा नहीं आया, बाग वालों का किस्सा आया, फिर उसके बाद मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा आया, और इसके बाद यहाँ पे ज़ुल्करनैन का आया। हालांकि उनके नबी तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो उनको चाहिए था कि उनके बारे में पूछते और उस किस्से में कितने सबक हैं, कितनी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन उन्होंने उनका नहीं पूछा और इनका पूछ रहे हैं। और अल्लाह ताला उनके किस्से को पहले लेकर आया, इस किस्से को बाद में लेकर आया, दोनों में सफर है। उस किस्से में इल्म के लिए सफर है, इस किस्से में जमीन में हकूमत के लिए सफर है, सफर दोनों ही है, मगर इल्म का सफर देखिए अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया हकूमत के सफर से। इससे पता चलता है अल्लाह ताला के हाँ कद्रो कीमत इल्म के सफर की कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे ज़ुल्करनैन का अब किस्सा आया है, आप देखें कि पहले किस्से के अंदर एक काफिर था जो गालिब था, और जो मोमिन थे वो कमजोर थे, इसमें आप देखें ये मोमिन बादशाह ये गालिब है, और इसमें काफिर कमजोर होंगे। मुफसिर बहुत बड़े हैं मुजाहिद, वो लिखते हैं कि सिर्फ चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया पर मशरिक से मगरिब तक हुकूमत की है, इनमें दो मोमिन हैं और दो काफिर। कौन है दो मोमिन? आपको कुछ पता क्या कहते हैं आप लोग? एक तो सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक जुलकरनैन, और दो काफिर कौन से हैं? आपके जहन में किसका नाम आता है? एक नमरूद और एक बुख्त नसर जो बेबीलोनियों का बादशाह था। इनके अलावा जो बादशाह बहुत सारे आए हैं मगर पूरी दुनिया पे नहीं किसी ने हुकूमत की। बाज लोग कहते हैं कि जुलकरनैन सिकंदर आजम था, मगर ये बिल्कुल बात सही नहीं है, इसलिए कि सिकंदर आजम जिसको कहते हैं वो मुशरिक बादशाह था, उसके तो बारे में आता है। और उसका उस्ताद एरिस्टोटल था, अरस्तू, वो भी मुशरिक था, बुतपरस्त था, तो इसलिए वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये पता चलता है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आए हैं जुलकरनैन, और ये मुसलमान थे। इन्होंने बाज जगह पे आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, काबा का तवाफ किया था। तो ऐसा नहीं है कि जुलकरनैन सिकंदर आजम हो। और फिर बाज ने कहा कि वो कोई चाइनीज है, और वॉल ऑफ चाइना जो है वो इब्ने आशूर अपनी तफसीर में लिखा कि वॉल ऑफ चाइना जो है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वॉल नहीं है जो याजूज माजूज की बनाई गई है। ये बिल्कुल बात सही नहीं है। अच्छा, बाज कहते हैं वो साइरस बादशाह था जो आया था, तो ये भी नहीं सही लगता क्योंकि ये सारे अकीदे में सही नहीं थे। बाज कहते हैं यमन का बादशाह था, इसलिए कि यमन वालों का नाम जू या लकब कह सकते हैं, जू से शुरू होता है, तो ये भी जू है। तो वल्लाहु आलम, हमें नहीं ये इतना ज्यादा पता चलता कि ये कहाँ से था, और इसको इतनी ज्यादा हमें तहकीक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असल बात ये है कि वो एक मुत्तकी आदमी था और बड़ा इंसाफ वाला बादशाह था। और हमें पता चलता है बाज कहते हैं कि वो नबी था, बाज कहते हैं नहीं नबी था, तो ज्यादातर यही है कि वो नबी नहीं था। जिन्होंने कहा कि वो नबी था वो इसलिए कहा कि आगे आएगा कुल ना, हमने उससे कहा, तो हमने उससे कहा से उन्होंने ये सोच लिया कि वो नबी ही होगा इसीलिए। हालांकि देखें, जो कुलना की बात आई है ना, तो वो तो बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ कुल नदखुलू हादिल करिया, हमने उनसे कहा कि दाखिल हो जाओ, तो उनके पास कोई, वो तो नबी थोड़ी थे। वो उम्मे मूसा को भी इल्हाम हुआ था, तो शहद की मक्खी को भी अल्लाह ताला ने वही की, तो ये वो इससे कोई नबी नहीं हो जाता, ये तो इल्हाम है जो अल्लाह ताला दिल में डालता है। ठीक है, तो वो पूछते हैं आपसे जुलकरनैन, और वो पूछते हैं, हाँ ये वाली बात भी, वो पूछते हैं यहाँ पे इससे पहले जो किस्से आए हैं उसके अंदर ये लफ्ज नहीं आया, वो पूछते हैं आपसे। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये किस्सा उनके पूछने के ऊपर यहाँ बयान किया है, इसलिए यहाँ पे ये कहा गया जो मैंने आपको वजह बताई कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से का पूछना चाहिए था, वो तो तुमने पूछा नहीं, और इसके बारे में पूछते हो तुम, इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? इसलिए यस अलूना का। और देखिए, हम जैसे पहला किस्सा हमने क्या देखा था, ईमान की आजमाइश का, इंसान की ईमान की, जब दीन की आजमाइश आती है ना, कितनी मुश्किल होती है। फिर दूसरा किस्सा हमने क्या देखा था, माल की आजमाइश का। फिर तीसरा किस्सा हमने क्या देखा, इल्म की आजमाइश। और अब ये चौथा किस्सा है हुकूमत इकतदार का जो फितना है, कि जब इंसान के पास पावर आ जाती है तो फिर क्या होता है। तारीख गवाह है इस बात पे कि जितने लोग पावर पा जाते हैं अक्सरियत उनमें से करप्ट हो जाती है, और मजीद पावर, मजीद वो जुल्म व सितम, तकब्बुर और आपे से बाहर हो जाना, क्योंकि जब पावर आती है ना तो उसके साथ ही दौलत, शोहरत, औरत और अथॉरिटी, ये सब आ जाते हैं जब इंसान के पास हुकूमत आती है। और इनके साथ बहुत लोग, कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाल सकते हैं। ये कहना बड़ा आसान है। वो कहते हैं ना कि एक जगह आता है कि एक बंदा ने हर वक्त कहता रहता था कि हमारे हुक्मरान ऐसे और इनको ऐसे करना चाहिए और इनको ऐसे करना चाहिए, और ये तो हड़प कर जाते हैं माल, और ये ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि हम हर वक्त ही बोलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस बंदे को आजमा लिया, उसको छोटे से जमीन के टुकड़े की हुकूमत दे दी। तो वो उसमें उसने इतना जुल्म किया कि वो जो बड़ा हुक्मरान था ना, बड़ी मुमलिकत का हुक्मरान, उससे भी ज्यादा जुल्म में बढ़ गया। तो ये बहुत बड़ा फितना है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया कि कोई अबवाबुस सलातीन या बादशाहों के दरवाजों पे जाए, क्योंकि ये तबाही की तरफ ले जाता है इंसान को। बड़ा अच्छा भी आदमी होगा ना, वो भी बड़ी नेक नियति से शुरू करेगा, लेकिन जब इस फितने में पड़ जाता है, संभाल नहीं सकता खुद को। इसलिए आप देखिए सहाबा कराम ना, सुभान अल्लाह, यानी उनकी जिंदगी हमारे लिए उसवा है ना, तो उनको देखें कि वो अल्लाह हु अकबर इतना बचते थे ना इक्तदार से, कि वो नहीं चाहते थे हमारे हमें ना मिले। तो उमर को जब यानी खिलाफत दी गई और उन्होंने आगे एक सहाबी को एक ओहदा दिया, किस जगह का गवर्नर बनाया था गालिबन, तो वो इनकार करने लगे मुझे ना ये दे, मुझे ये जिम्मेदारी ना दे, तो कहने लगे मुझे मेरे ऊपर बोझ डाल दिया और खुद इसे बच रहे हो। नहीं, उनके लिए ये बोझ था, उनके लिए ये मुश्किल थी। या अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को कहते हैं, जब उनको खिलाफत मिलने लगी तो उस वक्त वो कहते हैं उमर मुझसे बेहतर है, इनको खलीफा बनाओ। उमर कहते नहीं मैं नहीं, ये मुझसे बेहतर है, इनको बनाओ। अब आप देखें और आज हमारा क्या हाल है कि लूट कसूट के हम कहते हैं बस हुकूमत मिल जाए, जो आता है वो कहता है मेरे हुकूमत से चिमट जाऊं और मुझे इस बस मुझे सरबरा बना दो। अगर वाकई इनको इस्लाम की सही समझ हो तो ये बचे इससे कि अल्लाह ताला के हाँ इसका बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। और खास तौर पे जो मांग के हुकूमत लेता है ना, तो फिर हदीस में आता है अल्लाह ताला उसको उसके ही हवाले कर देता है। जब लोग बनाते हैं आपको कि खुद आपको पकड़ पकड़ के लाएंगे कि आप बनो, तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ आती है। को पता है इमाम मेहदी वो खुद नहीं बनेंगे, लोग उनको बनाएंगे, वो इससे बच रहे होंगे, वो लोग उनको कहेंगे कि नहीं आप हमारे इमाम बने, आप हमें लीड करें। तो इस्लाम का तो ये नजरिया ही नहीं है कि मांग के लिया जाए कोई ओहदा हुकूमत पावर, और ये बिल्कुल उलट है। ये जमहूरियत, जमहूरियत का जितना बात की जाती है ना, उससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि जमहूरियत के अंदर तो क्या है, मांगा जाता है मुझे दे दो वोट वरना पता नहीं मैं क्या हो जाएगा मेरा, मैं ही बेस्ट हूं और बाकी सारे बुरे हैं। दूसरी तरफ इस्लाम तो बिल्कुल इससे उलट क्या था। तो अल्लाह हु अकबर, तो हमें पता चलता है कि ज़ुल्करनैन जो था ना, वो एक बड़ा ही आदिल इंसाफ पसंद बादशाह था, और इसका नाम ज़ुल्करनैन क्यों है? कर्ण का मतलब होता है हॉर्न, सींग, नहीं जैसे हम कहते। तो खैर इसके सर पे सींग तो नहीं थे, मगर उसके बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस दो चोटियां बनाता था। बस पुराने जमानों के अंदर लोग होते थे ना, दो चोटियां बनाता था, तो यहां से वो शुरू होती थी, तो वो इसलिए उसको कर्नैन, दो कर्णों वाला कहा गया। ठीक है, बाज ने कहा कि नहीं ये वजह नहीं थी, वो एक हेलमेट पहनता था जिसपे दो सींग जैसी चीजें नहीं लगी होती, जैसे आपने भी ऐसे हेलमेट देखे होंगे, तो वो थे इसलिए। बाज कहते नहीं इस वजह से नहीं, वो चूंकि मशरिक से मगरिब तक इसकी हुकूमत थी, तो एक कर्ण मशरिक और एक कर्ण मगरिब। बाज कहते नहीं इस वजह से नहीं, बल्कि ईरान और यानी फारस और रोम पे इसकी हुकूमतें थी, इसलिए इसको ज़ुल्करनैन का तो दो कर्ण होंगे। बाज कहते हैं कि कर्ण मतलब सेंचुरी के लिए भी आता है ना, एक जमाना, तो दो कर्णों में यानी इसकी बहुत लंबी इसको उम्र मिली थी, तो दो नस्लें इसने देखी थी, तो इसलिए। बाज कहते हैं कि इसने लोगों को दावत और तबलीग की, तो उन्होंने इसको इतना मारा कि उसके सर में दो जैसे लंप से बन जाते हैं ना, उस तरह ये दो ऊपर बन गए थे, तो जिसकी वजह से कहा गया। बाहर क्या सारी ही तफासीर मिलती हैं। अब असल बात ये है कि जो भी वजह हो, मगर ये पता चलता है कि अल्लाह ताला को बड़ा प्यारा था वो। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान में रख दिया कि रहती दुनिया तक लोग उसके बारे में पढ़ते रहें। हालांकि कितना बड़ा उसको इक्तदार मिला, कितनी बड़ी हुकूमत आप आगे देखेंगे अभी, लेकिन वो कैसा बादशाह था। इससे हमें पता चलता है कि जब हम इस हुकूमत इक्तदार पावर, चलो इक्तदार आपको पूरे मुल्कों का नहीं मिला, कहीं तो आपको कहीं लीडरशिप मिली होगी, कहीं आपको कोई पावर होगी, चाहे अपने घर की हुकूमत आपके जिम्मे हो, आपके पास हो, तो उसके अंदर भी इंसान कैसे रहे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ ये नहीं कि हुक्मरान बिगड़ जाते हैं, पावर बंदे को, चाहे क्लर्क भी है ना ये, चाहे कोई छोटी सी जगह का, वो एक चार फाइलें ही उसके पास आती हैं, वो उसका भी बाथिया बन के बैठ जाता और कहता मेरे से ज्यादा बड़ी की चीज ही कोई नहीं। तो वो पावर कहाँ पे भी आ जाए, वो इंसान को अक्सर बिगाड़ देती है। तो ऐसे बादशाह से हमें सीखने को कहा गया जिसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ भी नवाजा था, लेकिन सुबहान अल्लाह के वो बंदा कैसा रजुले मोमिन था, वो कैसा बंदा था कि उसके अंदर कोई करप्शन नहीं आई, उसकी बातें कैसी हैं, मतलब इंसान इंप्रेस हो जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, कह दीजिए, किसको कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी आप कह दें, सअत्लु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, मैं अनकरीब पढ़ के सुनाऊंगा तुमको इसमें से, यानी उसके किस्से में से, ज़ुल्करनैन के हालात में से। ज़िक्रा, ज़िक्रा क्या होता है, ज़िक्रा का मतलब होता है याद दिहानी, रिमाइंडर, यानी उसकी, और ज़िक्रा उसको भी कहते हैं जिस चीज से हम सबक लेते हैं, यानी ऐसी बात जो याद दिहानी हो जाए, क्योंकि ये बातें भूल बहुत जल्दी जाती हैं, वो बातें जो भूल जाती हैं ना उनकी याद दिहानी हो जाए, वो अल्लाह ताला बताएगा। और दूसरी बात ये कि जिसके अंदर सबक है, जिसमें फायदा है आपको, और ना उसकी जिंदगी तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी, वो पता नहीं किधर किधर गया होगा, किधर उसने ट्रेवल किया होगा, किधर वो रहा होगा, तरह तरह के लोगों से मिला होगा, पूरी जिंदगी की कहानी बताने शुरू कर दे फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पूरी किताब ही उसके ऊपर चली जाएगी। लेकिन कहा गया मेन हूँ उसमें से कुछ, मिन तबी अजिया है, यानी बाज उसमें से कुछ जिक्र मैं तुमको सुनाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो बातें आने वाली हैं वो जल्दी भूल जाती हैं, और वाकई भूल जाती हैं, क्योंकि याजूज माजूज का भी जिक्र आएगा जो हमें बहुत भूल जाता है आखिरी जमाने में, जिन्होंने निकलना है, तो उनकी याद दिहानी भी जरूरी है। फिर पावर के अंदर रह के अपने आप को संभाल के रखना, ये याद दिहानी हमेशा ही रहनी चाहिए, है ना। हम तो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं ये, बस मेरे पास पावर आ गई, मुझे तो लगता है मैं सारी जिंदगी बस अब या कभी जानी नहीं है मेरे से, अब कभी टेबल्स टर्न ही नहीं होंगे, मैं ही इसी तरह पावर में रहूंगी, तो ये बड़ी जल्दी भूल जाता है। तो इसमें जिक्र है, जैसे कहते हैं तज़कीर, याद दिहानी, तो जिक्र है इसके अंदर, याद दिहानी है इसके अंदर, ठीक है। इन्ना मक्कन्ना, बेशक हमने इख्तदार दिया हमने उसको, फिल अर्द जमीन में, मक्कन्ना का मतलब होता है पावर दे दी, बादशाहत दे दी, ठीक है, इस्टेब्लिश कर दिया उसको। तो इसका मतलब जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसको पावर दे दी, तो कितना कितनी पावर होगी उसके पास। वह आतैना, और दी दिए हमने वो उसको, इससे पहले किसके लिए आता है कि हमने उसको ये दिया, हमने उसको ये दिया, जो बाग वाला था ना उसके लिए भी तो आया था, हमने उसको दिया, मगर उसने इस चीज को पहचाना नहीं था। और आप ऑन द कॉन्ट्ररी ज़ुल्करनैन की बात देखेंगे ना, तो उसने पहचान लिया था, क्योंकि उसने आगे जाके आपको आएगा, वो कहता है कि मेरे रब की रहमत है ये सब, जबकि वो जो बाग वाला था ना, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी फरमाया कि हमने उसको ऐसा बाग दिया, ऐसी उसके अंदर नहरें थी, हमने उसके लिए नहर फाड़ दी, हमने उसके अंदर ऐसी चीजें उगाई, लेकिन उसने इस चीज को पहचाना नहीं। तो देन अल्लाह ही की होती है, जो नियमतें होती ना वो अल्लाह की तरफ से ही होती हैं सारी की सारी। हाँ ये है कि बाज इंसान पहचान लेते हैं, इसको रियलाइज कर लेते हैं कि मेरी ताकत और कुव्वत नहीं, मेरे अल्लाह की रहमत है मेरे ऊपर, और बाज नहीं रियलाइज करते, ठीक है। फिर आपने वो भी अंजाम देख लिया ना, जब रियलाइज नहीं किया, ना शुक्री की, ये भी ना शुक्री होती कि इंसान नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ ना करे, अपनी तरफ करे, मैं मुझे तो यहां इतना मिल गया है, मुझे तो वहां जाके भी इतना मिलेगा, यही कहा था ना उसने, अगर कयामत आई भी तो मुझे तो वहां पे भी मिल जाए। तो ये जो रवैया होता है अल्लाह ताला को पसंद नहीं होता, और जिसने नेमत दी है वो नेमत छीन भी सकता। तो हमने उसको दिया मिन कुल्ली शय, हर चीज में से, सबाबा असबाब जराए रिसोर्सेस दिए थे हमने उसको। अब देखिए, एक बादशाह के लिए कौन से रिसोर्सेस जरूरी हैं, हर चीज में से मतलब क्या कि इल्म में से भी इल्म होना चाहिए ना। जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो आपके पास इल्म भी होना चाहिए, आर्मी भी होनी चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, आपके अच्छे फॉलोअर्स भी होने चाहिए, तभी एक बादशाह कामयाब होता है। आपके पास इंजीनियरिंग का भी पूरे सारी पूरे मतलब माहिरीन होने चाहिए, आपके पास नेविगेशन के भी होने चाहिए, उस वक्त कोई गूगल मैप तो था नहीं। फिर आपके पास ट्रांसलेटर भी होने चाहिए, मतलब जो सारी चीजें एक बादशाह को कामयाब बनाने के लिए हैं वो सब उसके पास थी। अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ था इन चीजों से, ठीक है, हर तरह के टूल्स यानी उसको मुहैया किए हुए थे, मिलिट्री भी, माल असबाब भी, आर्किटेक्चर भी, इंजीनियरिंग भी, उलमा भी, यानी हर तरह की चीजें, ठीक है। अच्छा अब देख ले, हर तरह की चीजें उसको मिली हुई है, तो आप देखिएगा कि फिर भी उसके अंदर तकब्बुर ना होना, फिर भी उसको अपने आप को बड़ी चीज ना समझना बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि हमारे पास थोड़े सा भी कुछ ज्यादा आ जाए ना दूसरों से तो हमारी हालत क्या होती है, गर्दन में सरिया आ जाता है, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े बन बन के बैठते हैं, मेरी प्रोफेशन में ये प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हूँ, या मेरा घर इतना बड़ा है, या मैं फलां गाड़ी चलाती हूँ, या मेरे तो जहाज चलते हैं, या मैं तो मिलियनेयर हूं। फिर उसके बाद आप मिजाज देखिए इंसानों के कैसे बदलते हैं। तो आप लेकिन बेहतर ये है हम दूसरों का ना सोचे, हमारे पास जो चीजें हैं ना उनके ऊपर हम नजर करें, हमें भी तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, क्या चीज नहीं हमें दी हुई, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर क्या आजी है उन चीजों को पाके, हो सकता है हम भी अपने दोस्त है बाद में एक बादशाह की हैसियत रखते हो, यानी हम उनमें सबसे ऊपर हो, अपने रिश्तेदारों में हम माली तौर पर या असबाब में या हम मुलाद में या हम और घर बार में उनसे ज्यादा हो, फिर हमारा क्या रवैया है, ठीक है। मैं आपको चाहती हूँ कि आप एक जुल्करनैन की कहानी सुन के ये ना सोचे जो उसके पास इतना था, हमारे पास कौन सा इतना है, हमारे पास नहीं भी कुछ होता ना तब भी गिनने लगे तो बहुत कुछ है। और तकब्बुर के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ही मुमलिकतों का बादशाह ही होगा तो तकब्बुर होगा, जिसके पास को थोड़ा एक घर बार है उसके पास नहीं हो सकता, नहीं, जितना कुछ भी इंसान के पास होता है वो उसके अंदर ही तकब्बुर करने लगता है। मसला ही तकबर का ये है ना कि गुरूर गुरूर धोखा है, धोखे में पड़ जाता है। फअतबअ सबबा, तो उसने पैरवी की सबबा असबाब की, यानी उसने इन असबाब से काम लिया, इस्तेमाल किया इनको, ठीक है, यानी जो भी उसकी आर्मी थी, जो भी उसके अफराद थे उनके साथ वो चल पड़ा, इनको इस्तेमाल किया, यानी अब लेके इनको चल पड़ा है ना, सारी जो भी जिसके पास पूरे चीजें थी, हत्ता यहां तक के अब उसने एक फर्स्ट अपना जो जर्नी किया है, सफर किया है, उसके बारे में आ रहा है। हत्ता इदा बलग मगरिब शम्स, हत्ता के जब वो पहुंच गया सूरज के गुरूब होने की जगह, वजदहा तगरुबु फी ऐनिन हमीअतिन, तो वो गुरूब उसने पाया उसको कि वो गुरूब हो रहा था, फी आइनिन हमी अतिन, ऐसे चश्मे में जो हमी अतिन, इसकी दो किरात हैं, ठीक है, एक तो यही है जो हमी अतिन है यानी एक मगी सा गदला सा पानी जो होता है, वो जैसे आप कहें कि मडी कीचड़ वाला, ठीक है, तो वो और दूसरी इसकी किरात है आइन इन हामियतिन, कि ऐसा चश्मा जो उबलते हुए पानी वाला हो, शायद कोई लावा होगा या कहते हैं शायद ये ऐसा हो कि उबल रहा है। अब देखें जब सूरज गुरूब हो रहा होता है ना, और आप समुन्दर के किनारे खड़े होकर देखें तो ऐसे लगेगा ना कि जैसे सूरज समुन्दर में गुरूब हो रहा है, पानी के अंदर जा रहा है, तो यानी वो चलते चलते फार वेस्ट में चला गया जहां पे आगे पानी था, ये चश्मा था, और वो ऐसा चश्मा था और उसके अंदर जैसे मतलब लगता है कि गुरूब हो रहा है सूरज इसके अंदर, बड़ी ये खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है, ये भी बड़ा एक जबरदस्त मंजर होता है। यानी अभी इसके आगे पास पानी था, इसके आगे वो नहीं जा सकता था। बाज कहते हैं ये ब्लैक सी है इसलिए कि इसका पानी ऐसा है, और वो उस एंड पे आ गया, यानी जमीन के अब आगे उसके ऐसी थी कि वो आगे नहीं जा सकता था। वजदा इंदहा कौमन, तो उसने पाया एक कौम को वहां पे, यानी उसने फतह कर लिया उस कौम को। ठीक है, कुलना, हमने कहा, इस बात की वजह से बाज ने ये सोचा कि शायद वो नबी थे, हमने कहा या दल करनई, ए जुल करनई, इम्मा अंतु अजीबा, ख्वा ये कि तू अजाब दे, वा इम्मा, और चाहे ये कि तू तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, इनके मामले में भलाई करे, भलाई इख्तियार करे। यानी अल्लाह ताला ने इल्हाम कर दिया ज़ुल्करनैन के दिल में कि जाहिर है उसके पास इतनी पावर थी ना कि मैं दो चीजों में से कोई एक भी कर सकता हूं, चाहे तो मैं इनको सजा दूं या चाहे मैं इनके साथ अच्छा सलूक करूं। तो यहां से भी पता चलता है कि ज़ुल्करनैन कैसा बादशाह था कि चाहता तो बिल्कुल खून खराबा कर सकता था। जैसे फातहीन जब किसी बादशाह किसी जगह को फतह करते हैं तो उसके बाद क्या हाल करते हैं, आप तातारियों का अगर आप पढ़ें कभी, अस्तग़फिरुल्लाह, के दुनिया में जिधर गए उन्होंने इतनी तबाही की, इतना जुल्म सितम किया। और अक्सर फातहीन ऐसे ही करते, जिस जगह पे कब्जा कर देते वहां की ईंट से ईंट बजा देते, जुल्म के पहाड़ ढा देते हैं। तो उसने कहा, अगली दो आयतें पढ़ लेते फिर मैं आपको बताती हूँ। कौला, उसने कहा, अब उसने ये फैसला किया, अम्मा मन ज़लमा फसौफ़ नुआदिबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बी फयुआदिबुहु अदाबन नुकरा, जहां तक वो है जो जुल्म करें तो अन करीब हम अजाब देंगे उसको, यानी सजा देंगे, थुम्मा युरद्दु, फिर वो अपने रब की तरफ पलटेगा तो वो वहां पे भी अल्लाह ताला भी उसको फिर सख्त अजाब देगा। इंसान का तो अजाब नुकरा नहीं हो सकता, अल्लाह के पास जो अजाब है वो तो बहुत सवेर है, बहुत सख्त है। इसलिए अपने सजा देने को उसने ये नहीं कहा कि नुकरा, अल्लाह ताला ने जब सजा देनी है तो वो नुकर होगी। वह अम्मा मन आमना व आमिना सालेहन, और जो कोई ईमान ला के सौले अमल करे, फलाहु जजा अनिल हुस्ना, तो उसके लिए अच्छी जजा है। वसनकुलु लहु मिन अमरिना युसरा, और अन करीब हम उससे कहेंगे अपने हुक्म में से आसान बात। तो अब जब उसके पास ये अथॉरिटी आई कि आप चाहे तो वो इनके साथ नरमी बरते और चाहे तो इनके ऊपर सख्ती करे, मगर उसकी नेचर यहां से पता चलती कि वो कैसा इंसान था, वो कितना इंसाफ पसंद था, कितना अच्छा आदमी था, कि उसने ये कहा कि मैं जो जुल्म करेगा, जो इनमें से जालिम होगा, अब जुल्म के अंदर शिर्क भी आता है, जुल्म के अंदर कत्लो गारत भी आती है, जुल्म के अंदर फिस्को फुजूर और भी जितनी जुल्म की किस्में आप सब देख ले हो, सब जुल्म ही है कि दूसरों से ज्यादती, चोरी, डाके, लूट मार, ये सब जुल्म की किस्में हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि जो जुल्म करेगा हम उसको अजाब देंगे, यानी हम उससे सख्ती से निपटेंगे, उसको सजा देंगे, और फिर वो अल्लाह ताला के पास भी पलटेगा। इससे पता चलता है कि उसका ईमान आखरत पे था, आखरत में भी फिर अल्लाह ताला उसको बहुत बुरी सजा देगा। तो ईमान आखरत पे भी पता चला, और ये भी पता चला कि इक्तदार ने उसका दिमाग खराब नहीं किया था, उसके दिमाग पे नहीं चढ़ गई थी ये कुर्सी। ठीक है, और ये भी पता चलता है कि वो खुद भी नेकी और भलाई को करने वाला था, इसलिए कि जो खुद नेक होता है ना वही इस चीज की वैल्यू कर सकता है। उसने देखें दो ग्रुप बनाए इस बेस पे कि जो नेक है उनके साथ ये होगा, जो बाद है उनके साथ ये होगा। हालांकि कौन से बादशाह देखते हैं, जब वो कोई फतह करते हैं कोई देखता है कि नेक कौन है इनमें और बद कौन है? कोई भी नहीं देखता, वो तो सबको मारते हैं। तो और इसी तरह जो खुद करप्ट होते हैं ना, खुद जुल्म करने वाले होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कोई नेक है या बद है, उनको तो जहां से उनकी फायदा हो रहा था वो तो वो देखते हैं। इसका क्राइटेरिया डिफरेंट था, और इसने कहा कि जो ईमान लाके सौले अमल करेगा फिर हम उसको जजा, उसके लिए जजा अनिल हुसना। अच्छा एक बात और पीछे रह गई, ये पिछली आयत में देखे, उसने कहा कि जो जुल्म करेगा फसाउफा, सौफा का लफ्ज जो है ना तराखी के लिए आता है, यानी उसमें थोड़ा सा डिले उसके लिए आता है सौफा। जैसे मैंने आपको बताया था सा सीन जब आता है सयकूलून जैसे आया आगे, तो सीन सिर्फ होगा तो वो जल्दी है, और सौफा जो है वो थोड़ी सी देर है, देर के साथ हो जाएगा लेकिन थोड़ी सी देर के साथ। इससे पता चलता है कि जो जुल्म करने वाला उसको फौरी नहीं पकड़ेंगे, उस फौरी सजा नहीं दे देंगे, बल्कि उसको दावत देंगे, तबलीग करेंगे, समझाएं बुझाएंगे, लेकिन वो फिर भी अड़ा रहता है अपने जुल्म पे, कुफर पे, नाफरमानी पे, जराइम पे, तो सजा देंगे उसको, ठीक है। और जब अल्लाह ताला के पास जाएगा तो वहां पे भी सजा होगी। दूसरा, अब आगे आप देखें जजा अनिल हुसना, आपको पता है जजा अनिल हुसना जो है ना, हुसना ये सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट बेस्ट, इससे ऊपर कोई वर्ड नहीं है। हसन है ना, हसन नहीं कहा गया जजा अनिल हसन, हुस्ना कहा गया। हसन होता है तो मतलब गुड है, लेकिन हुस्ना है तो बेस्ट है, और ये जन्नत के सिवा कोई और जगह नहीं हो सकती। और इसके लिए उसने देखें जब जुल्म की बात की तो फिर खुद सजा देने की बात पहले की, और बाद में अल्लाह ताला की तरफ बात की कि वो भी अजाब देगा जब वहां पे इंसान जाएगा ऐसा। और जब ईमान और साले अमल की बात की तो पहले अल्लाह ताला के रिवॉर्ड की बात की, ठीक है, सजा की बात खुद की पहले की, अल्लाह ताला की तरफ से सजा की बात नहीं की। जजा की जब बात की, ईमान और अमले साले पे जो जजा मिलनी है, अच्छी अच्छा रिवॉर्ड मिलना है, उसमें अल्लाह ताला की पहले बात की और बाद में अपनी की, बस नकुलु लहु मिन अमरीना युसरा, हम भी अपनी तरफ से उसके लिए आसानियां को मामला करेंगे, ईज करेंगे उसके लिए। क्यों ऐसे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसलिए कि ईमान और साले अमल का दुनिया में तो कोई भी रिवॉर्ड नहीं दे सकता। जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के पास ऐसे इंसान के लिए अजर है ना, वो दुनिया में मिल ही नहीं सकता। दुनिया में बाज दफा तो ऐसे होता है कि इंसान ईमान लाके साले अमल करता भी है तो बगैर कोई कुछ भी दुनिया में फायदा देखे वो दुनिया से चला जाता है। जैसे बहुत सारे सहाबा, हजरत हमजा हैं, हजरत ये मुआज बिन जबल हैं, नहीं मुआज बिन जबल नहीं, दरबार के अब दूसरे सहाबी, तो जो शहीद हुए ओहद में, बदर में शहीद हुए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, तो उनके लिए फिर क्या है। हाँ मुझे याद आ गया, मुसा बिन उमेर, मैं कहना चाह रही थी, मुसा बिन उमेर हैं, हजरत हमजा हैं, और सहाबा कराम हैं, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने तो कोई इस्लाम के जो फतुहात थी और इस्लाम का जो अच्छा टाइम आया था बाद में, फ्लरिशिंग का टाइम आया था, इस्लाम जब छा गया था, उरूज का टाइम आता, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो बाज दफा इंसान को दुनिया में कुछ भी नहीं मिल पाता, तब भी ये यकीन रखना जरूरी है कि उसको अल्लाह ताला की तरफ से जजाए हसन मिलेगी, हुस्ना मिलेगी, यानी जन्नत। जजाए हुस्ना सिवाय जन्नत की और कोई चीज ही नहीं हो सकती, जन्नत मिलेगी, ठीक है। और दुनिया में मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा है, मगर ना भी मिले तो वहां उनके लिए ये है। तो और उसने कहा कि हम भी उसको आसानियां देंगे। देखिए अब आप देख रहे हैं ना कि जो इक्तदार पाता है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने आई, ठीक है। अल्लाह ताला अथॉरिटी दे ना तो फिर इंसान ऐसे ऐसे चॉइसेस करे, यानी उसके पास सख्ती करने की भी, जुल्म करने का भी, उसके पास उस सारे लोगों को मार काट के एक तरफ लगाने का भी इख्तियार था, लेकिन वो कैसा था बंदा, यहां से आपको पता चल गया। और ये भी पता चला कि वो दुनिया के अंदर दीन की तबलीग करने वाला था, इसीलिए उसने कहा ना ईमान और साले अमल। और हमें भी तो यही सिखाया गया, ईमान और साले अमल। और ये सूरत खत्म भी इसी के ऊपर होगी, ईमान और साले अमल, सारे कुरान में यही है। तो इसका मतलब उसको इल्म था ना, उसने सिर्फ ये नहीं कहा सिर्फ ईमान ले, या उसने ये नहीं कहा बस अच्छे अच्छे काम करते रहे ईमान की खैर है, बस अच्छे काम कर रहे हैं, चैरिटी वर्क कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, बस बहुत अच्छा है, ईमान को छोड़ो। जैसे हमारे यहाँ आज कितना गलत ये कॉन्सेप्ट है, या फिर ईमान ले आओ तो साले अमल की जरूरत ही नहीं। ईमान है ना, हमारा दिल बहुत अच्छा है। अब अगर हमसे नहीं कुछ अच्छे नेक काम होते तो कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, आपको क्या पता हमारे दिल में कितना ईमान है, हमारी नजरों में कितनी हया है, कहते हैं ना। तो यही हमारा भी क्राइटेरिया होना चाहिए जिंदगी में, कि जो ईमान और साले अमल करने वाले हैं उनकी कदर की जाए। ठीक है, सुम्मा अथवा सबबा, फिर वो और एक वेंचर पे निकला, एक और सफर पे निकला, यानी मुसलसल चल रहा है वो, आराम से बैठ नहीं रहा। अब मैंने देखो काफी कर लिया तो इसका मतलब छोड़ो, अब असबाब से मुंह नहीं मोड़ता, असबाब इख्तियार करता है, जो उसको अल्लाह ताला ने रिसोर्सेस दिए हैं उनको यूज कर रहा है। तो हमारे पास भी तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, फिर हम करते हैं अतबा सबाबा, हाँ फिर हम करते कि हम उनकी पैरवी करें, यानी कि हम उन रिसोर्सेस को यूज करें और कुछ करके दिखाएं। तो रिसोर्सेज अल्लाह ताला इसलिए देता है कि आप उनको अल्लाह ताला के रास्ते में लगाएं। हत्ता इदा बलग मतले अश्शम्स, यहां तक कि वो पहुंचा सूरज के तुलू होने की जगह, यानी फार ईस्ट में चला गया। ठीक है, वजह दहा, पाया उसको, किसको, सूरज को, ततलू, कि वो तुलू हो रहा है, अला कौमिन, एक कौम पर, लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, नहीं बनाया हमने लहुम लिए उनके, मिन दूनी हा, इससे सूरज से, सितरा, कोई पर्दा, हमने सूरज से कोई पर्दा नहीं बनाया, यानी एक ऐसी कौम जिसके और सूरज के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, कोई सतर नहीं था। क्या मतलब हुआ इसका, यानी वो ऐसे लोग थे, सुभान अल्लाह, ऐसी कौम थी, इतनी अनसिविलाइज थी कि ना उन्होंने कोई घर बनाए हुए थे, ना कोई बिल्डिंग्स थी, ना वहां पे कोई पहाड़ दरख्त थे, ना कोई और शेल्टर था जहां पे वो यानी सूरज से बचने के लिए कोई पनाह ले सके, कोई जगह जहां पे जाके मतलब वो बैठ सके, वो ऐसे सूरज के नीचे ही रहते थे, सूरज पे एक्सपोज थे, सूरज और उनके दरमियान कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर, वो ऐसी कौमें हैं आज भी। आपको पता है कि वो उन्होंने एक जगह पे, पता नहीं कौन सी, ब्राजील के कोई जंगल थे शायद, वहां पे उन्होंने कोई कबीला देखा, उन्होंने बस मतलब ऐसे वो रहते थे कि उन्होंने बस अपनी शर्मगाहों पे जरा सा कपड़ा बांधा हुआ था और बाकी सारे नंगे थे। तो यहाँ पे अच्छा मुफस्सिरीन ने ये भी कहा है कि इससे मुराद ये भी है कि वो लोग नंगे ही रहते थे, कोई सतर ही नहीं था ढांपने को उनके लोगों, इतना ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने एक्सपोज थे, सूरज से एक्सपोज हो रहे थे, खुद भी इस तरह से भी कि कोई घर बार नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी, दूसरी ये भी कि उनके तन पे कपड़े ही नहीं थे। ठीक है, तो ऐसी जगह हैं जहां पे इस तरह के लोग आज भी रहते हैं, हम नहीं जानते, मगर हम सारी जमीन को तो जानते भी नहीं है। कदालिका वकद अहतना बिमा लदैहि खबरा, कदालिका से दो माने हो सकते हैं, एक तो ये कि जैसे दूसरी कौमों के साथ उसने डील किया उसी तरह इनके साथ डील किया जैसे पिछली के साथ किया था, तो कदालिका ये भी माना हो सकता है इस तरह ही उनका हाल था, ये उनका भी वही हाल था, इन लोगों का ये हाल था कि वो ऐसे ही रहते थे। वक़द अहतना बिमा लदैहि खबरा, और तहकीक घेर रखा है हमने जो उसके पास था खबर में से, मतलब यानी ज़ुल्क़रनैन इतना बड़ा बादशाह था मगर उसको भी नहीं पता था, उसको भी नहीं खबर थी कि यहाँ पे ऐसी भी कोई कौम रहती है, ऐसे भी लोग रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म ने अहाता कर रखा है। अहत ना, अहाता का मतलब होता है चारों तरफ से घेरे, यानी हर एंगल से अल्लाह ताला को उनके बारे में पता था। हम तो कभी किसी चीज को देखते हैं तो सिर्फ एक साइड से देख सकते हैं उसकी, एक उसकी समत देख सकते हैं, एक डायरेक्शन में देखते हैं ना, हम पूरी तरह चीजों का अहाता नहीं कर पाते। हम इसीलिए तो गलती खाते हैं क्योंकि हम कुछ समझते हैं वो बाद में कुछ और निकलता है, लेकिन अल्लाह ताला को हर एक चीज के खबर पूरा अहाता है उसका, सिर्फ खबर नहीं है पूरा अहाता है। ठीक है, तो उसने फिर उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो पता चलता है कि एक फ्लैट लैंड थी, बिल्कुल फ्लैट थी जहां पे कुछ नहीं था, वरना पहाड़ होते तो उनके नीचे चले जाते, कोई और शेल्टर होता तो फिर एक्सपोज ना होते सूरज से। तो ऐसी इतनी दूर की जगह गया, क्योंकि एक जगह वो वहां पे गया था, फिर अब दूसरी फार ईस्ट में चला गया, तो लंबे लंबे इसका मतलब है कि सफर कर रहा है। सुम अतबा सबबा, फिर वो फार ईस्ट से अब फिर उसने सबब इख्तियार किया, फिर एक मुहिम इख्तियार की। अभी तक क्या पता चला आपको इस बादशाह के बारे में? इसमें अदल है, इसमें इंसाफ है, ये ईमान और साले अमल को वैल्यू करता है, इसका मतलब खुद भी ईमान वाला और साले अमल करता है, और अल्लाह ताला की तरफ लौटने के ऊपर ईमान रखता है, और मेहनती है, और इख्तियार रखते हुए भी जुल्म नहीं कर रहा कहीं, और आराम से बैठता नहीं है जैसे कि बादशाहों का तरीका हो जाता है कि वो बस वो बैठते हैं और बस उसके बाद आराम ही करते हैं, फिर उसके तो कुछ करते तो नहीं है फिर। तो ये आदमी ऐसा था, हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, यहां तक कि वो पहुंचा बैन सद्दैन, दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान। अब यहाँ पे जबल नहीं आया कि सिर्फ पहाड़ है, पर पहाड़ी सिलसिले जैसे माउंटेन रेंजेस होती है ना, वो दूर तक माउंटेन रेंज, क्योंकि आड़ का माना है ना सद का, तो यानी ऐसी आड़ के बिल्कुल ब्लॉक कर दे। आप देखिए सद उसको कहेंगे कि मसलन पहाड़ है ना, एक पहाड़ है, अगर तो अगर पानी उसे टकराएगा तो साइडों से चला जाएगा, लेकिन जब सद होती है ना तो वो इतनी चौड़ी है कि पानी उसके साइडों से भी नहीं जा सकता। मैंने आपको जस्ट डिफरेंस बताने के लिए, वजद मिन दूनिहिमा कौमन, उसने पाया इस इनके अलावा एक कौम को, इनके अलावा से मतलब है कि इन दो पहाड़ों के दरमियान, मिन दूनिहिमा इन दोनों के दरमियान में, यानी एक कौम। वो कैसी कौम थी? ला यकादुना यफकहुना कौला, ना करीब थे कि समझते बात को, यानी ऑलमोस्ट ना समझ सकते थे उनकी बात, ऑलमोस्ट। ये ला यकादुन का मतलब ये, यानी आप थोड़ी बहुत बात उनकी समझ आती थी लेकिन ज्यादातर समझ नहीं आती थी, ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल ही नहीं समझ आती थी, करीब था कि ना समझ आए उनकी बात। आप देखिए ना, डिफरेंट डिफरेंट कौमों के पास वो गया। अब ये हमें ये भूलना नहीं है कि हमें पहले बताया गया कि इस किस्से के अंदर अल्लाह ताला वो बातें बताएंगे जो हमारे लिए जिक्र है, जिसमें हमारे लिए सबक है। तो वो बातों के अंदर आप देखें, पहली कौम से भी आप कुछ सीखते हैं, दूसरी से भी सीखते हैं कि ऐसी ऐसी कौमें भी दुनिया में हैं जिनके खबर सिवाय अल्लाह के और किसी को भी नहीं है, जो इतने मतलब प्रिमिटिव जमाने में, क्योंकि पुराने जमानों से लोगों को तामीर भी करते थे, कपड़े भी पहनते थे, तो कैसी भी कौमें हैं इस जमीन के ऊपर। फिर अब एक डिफरेंट ही कौम आई, इसका मतलब ये भी कोई दुनिया से दूर ही चीज थी, सिविलाइजेशन से कटे हुए थे, इसीलिए तो उनकी जुबान ना कोई जानता था ना वो किसी की जुबान समझ सकते थे, दोनों तरफ से ही था। हालांकि जुल्कर्नैन के साथ ट्रांसलेटर या जो भी होंगे, या वो खुद इतनी जुबानें जानता था, मगर अब किसी को भी इनकी जुबान नहीं समझ आ रही, ये हमें पता चलता है। ठीक है, और इतनी पता नहीं कहाँ कहीं दूर ही रहते होंगे जो सिविलाइजेशन से कटे हुए हों, क्योंकि वरना देखें किसी भी कौम में से कोई एक बाहर चला जाता है, कोई पढ़ के आता है, वो कहीं कोई जुबान सीख के आ जाता है, तो उनमें कोई तो होता है, लेकिन ये इसका मतलब कोई भी इनमें जुबान को जानने वाला नहीं था। कालू, उन्होंने कहा, या ज़ुल्करनैन ए ज़ुल्करनैन इन याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्ध, बेशक याजूज और माजूज फसाद करने वाले हैं जमीन में। अब उन्होंने कैसे कहा, फिर इनको कैसे समझ आई, अब आप सोचेंगे। देखिए बात यह है कि जो एक जुबान होती है उसके अलावा भी एक साइन लैंग्वेज, जिसको आप कह लें या इशारों की जुबान कह दें, कि उसमें भी इंसान दूसरे को कुछ समझा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज जो हैं, मुफसिदूना फिल अर्ध, युफसिदूना नहीं कहा, मुफसिदूना कहा। फर्क क्या दोनों में, युफसिदूना होता तो क्या होता, वो एक फेल होता, वर्ब होता, और वर्ब के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी नाउन में होती। ये नाउन है मुफसिदूना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं वो खाती है और खाने वाली, तो खाने वाली से आप क्या समझेंगे, और वो खाती है तो शायद एक दफा उसने खाया होगा, लेकिन खाने वाली है, या कुछ और चीज ले लें, चलो ये तो मैंने एक मिसाल आपको दी ना, उसने मदद की या वो मदद करने वाली है, वो ऐसी औरत है जो मदद करने वाली है, उसका नाम ही ये है। ठीक है, तो अब दोनों में क्या फर्क हुआ, एक के अंदर यानी आपको ये पता चलेगा कि यानी ये उसका काम ही है, वो ऐसे ही करती रहती है, करती रहती है मुसलसल, कि उसका नाम ही ये पड़ गया। ठीक है, इसी तरह मुफसिद की जमा मुफसिदून, हमेशा फसाद करते रहते हैं, उनका काम ही है फसाद करना, वो एक फसादी कौम है, जिसको आप कहते हैं ना उसने फसाद किया। हाँ, अब इससे समझ ले, उसने फसाद किया या वो फसादी है, समझ आती है ना दोनों में फर्क। तो वो फसादी का मतलब है कि कोई लोग होते हैं जो फसाद ही करने का उनको शौक होता है हर वक्त, और फसाद में भी क्या आ जाता है, तबाही करना, चोरी डाके रेप करना, और इस तरह ये सारे फसाद किए हैं, जो जराइम की ये बड़ी बड़ी जो किस्में हैं, ये फसाद है जमीन पे, कत्लो गारत करना, लूट मार करना। तो ये याजूज और माजूज मुफसिदूना फिर अर्थ, वो जमीन में फसाद करने वाले हैं। इनके बारे में अभी डिटेल में देखते हैं कौन थे याजूज और माजूज, लेकिन पहले इस किस्से को देख लेते हैं। फहल नजअलु लका खरजन, तो क्या हम बनाएं आपके लिए कोई खराज, यानी कुछ आपके लिए कुछ सैलरी आपको के का इंतजाम करें, कुछ आपको पेमेंट का इंतजाम करें, अला अंतजाला बैनाना व बैनहुम सद्दा, कि आप बना दें हमारे और उनके दरमियान एक रोक। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कि देखिए जो एक भला इंसान होता है ना, जैसे आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल वालों ने पहचान लिया था, ये एक मुत्तकी इंसान है, एक अच्छा इंसान है, तो आपको फिर बताने की बार बार जरूरत नहीं होती, मैं तो इतनी नमाजें पढ़ती हूँ, मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मैं तो इतनी आलिमा हूँ, मैं तो फिर आपकी नेकी टपकती है आपके चेहरे से, नेकी का नूर चेहरे पे भी आ जाता है, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। और आप देखते हैं कि बाज लोगों के चेहरे के ऊपर ऐसा होता है, आपको देखते ही लगता है कि ये कोई भला इंसान ही है। तो जब वो उनके पास गए हैं, आप जरूर नए को उनको तबलीग तो करनी, नहीं समझ तो आती नहीं थी उनको बात, उनको कैसे पता चल गया ये। देखिए एक तो मैसिव आर्मी देखी उन्होंने, इतनी बड़ी आर्मी है, अब आर्मी वाले तो जुल्म वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया कि ये कोई अच्छा ही इंसान है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की ज़ुल्करनैन से कि हम आपके लिए कुछ पेमेंट तय कर लेते हैं आपके साथ, और आप प्लीज हमारे लिए साथ ये काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सता रखा। वो लोग क्या करते थे, याजूज और माजूज है ना, दो कौमी है, एक कौम का नाम है याजूज और एक का नाम है माजूज। ठीक है, ये जो कौमे हैं ये दो आदमी नहीं है, सिर्फ दो कौमे हैं, तो ये हमें इतना सता रही है, इतना फसाद करती हैं, ये आते हैं हमारे वहां इतनी तबाही करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, फसलें उजाड़ देते हैं, सब खा पी लेते हैं, लूट मार करते हैं, तबाही करते हैं और चले जाते हैं, तो आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। आप देखें वैसे जब आप किसी को कोई जॉब की ऑफर करते हैं ना, तो पहले क्या बताते हैं, सैलरी नहीं कभी पहले बताते, आप पहले ये बताते हैं आपने ये काम करना है, फिर आप कहते हैं इतनी आप सैलरी देंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे वो पेमेंट की बात पहले कर रहे हैं और काम की बाद में कर रहे हैं, क्यों, से पता चलता है कि वो इतने डेस्परेट हैं कि आप हमें बना दें, हम आपको देने को तैयार हैं इतने, आप हमारा ये सिर्फ काम करते हैं। और ये भी पता चलता है कि इसका मतलब याजूज माजूज भी इस कौम को जानते थे और ये भी उनको अच्छी तरह जानते थे, ठीक है। और इसका मतलब है कि इनके पास इतनी थे कि वो कुछ पेमेंट कर सके। अब देखें आप, ये कोई आसान काम था भला कि वो क्या कह रहे हैं, कोई छोटी बात तो नहीं कह रहे, कोई घर की दीवार तो नहीं बनानी, किधर क्या कह रहे हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं उनके बीच के अंदर ऐसे दीवार खड़ी कर दें कि वो आ ना सके यहाँ पे, तो क्या मतलब होगा कि इतनी ऊंची दीवार जो पहाड़ों के ऊपर तक चली जाए, इतनी उसकी हाइट हो जितने पहाड़ हैं, और जितनी उसकी विड्थ हो जितनी दोनों माउंटेन रेंजेस के दरमियान की जगह जो गैप है वो सारा फिल हो जाए, तो ये आसान है कोई? आज भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर कितनी क्रेन्स चाहिए, कितनी मैन पावर लेबर कितनी चाहिए, कितना करोड़ों अरबों रुपया चाहिए। अच्छा अब देखते हैं कि जुल्करनैन क्या कहता है। अब आपको कोई ऐसा काम कह दे कि भाई मैं, हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, तो हम कहेंगे आप हमें क्या, अच्छा अच्छा करेंगे तुम्हारा कोई काम, वादे करके और फिर चले जाएंगे, और फिर वो यही हुक्मरानों का या इनका ज्यादातर तो यही काम होता है, हाँ हम आपकी मदद करेंगे, आपकी इमदाद जरूर होगी और ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे गायब हुए कि बस तस्वीरें ही बनवा ली और उसके बाद बस कुछ पता नहीं है इमदाद का। वो बेचारे देखते ही रह जाते हैं कोई मदद को आएगा जिसने वादे किए, वोट लेते वक्त कितने वादे होते, वो कह रहे हैं हमारा मसला ही हल कर दें, कितने लोग मसाइल के हल के लिए हुक्मरानों से कहते हैं जो उनके अपने हुक्मरान होते हैं, ये तो उनका हुक्मरान नहीं है, ये तो अब एक जा रहा है, एक एक्सपीडिशन पे निकला है, वो यहां पहुंचा है, अब वो क्या कहेगा भाई मुझे क्या, भाई आजू बाजू तुम्हें तंग करते हैं, मेरे मुझे इसे क्या, मैं तो जाऊं अपने रास्ते, तो ये नहीं कहता। और वो ये भी नहीं कहता कि अच्छा भाई मैं तो इतने मिलियन डॉलर लूंगा तब करूंगा, वो कहता है कौल अमा मकनी फी रब्बी सुभान अल्लाह, कहता है जो मुझे अल्लाह ने कुदरत दी है ना मेरे रब ने वो बेहतर है मेरे लिए, यानी मुझे नहीं इन पैसों की जरूरत, मेरे मुझे जो मेरे रब ने दे दी है वो मेरे लिए बेहतर है, वो यानी मेरे लिए काफी है, बस तुम ये करो फाइनूनी, तुम मदद करो मेरी सारे मिलके भी कुव्वत इंसात कुव्वत के, यानी मैन पावर अफरादी कुव्वत के साथ, अज अल बैना को व बैना हूं, मैं बनाऊंगा तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान क्या सद्दा, नहीं रोदमा, अल्लाह अकबर, सद्दा तो तुमने पूछी है ना, लेकिन सद जो है वो इतनी काफी नहीं होगी, जिस तरह की कौम का उन्होंने बताया कि वो ऐसे फसादी हैं, उनके लिए सद नहीं उनके लिए रदम बना के दूंगा तुम्हें, यानी जितनी उन्होंने आस्क की थी ना उससे भी बढ़ के चीज, उससे भी बेहतर चीज, क्या जबरदस्त आदमी था वो, ऐसा भी कोई आपने बादशाह देखा है अभी दुनिया में, कहीं पे भी नहीं देखा होगा, ऐसी कोई हुकूमतें देखी हैं कि कोई गरीब है कोई गरीब मुल्क है वो कहता है कि हमें कुछ दे दो, हमें कोई कर्जा दे दो, तो फिर वो क्या करते हैं, आज क्या होता है, या कोई वो अपने लिए रिसोर्स मानते हैं हमारा मुल्क चल जाए तो क्या करते हैं, उनको दे देते हैं कर्जे, फिर उसके बाद इतना बड़ा सूद लगा देते हैं कि वो मुल्क देते देते उसकी कमर टूट जाए, या ऐसी शराइत रख देती हैं कि वो बस कौम जो है ना बेचारी पिस पिस के खत्म हो जाए, तो ना कोई शराइत है यहाँ पे। उसने कहा बस आप लोग मेरे साथ हेल्प करोगे ये बस बात है, बाकी मुझे आपसे कुछ पेमेंट नहीं लेनी, कौन मुफ्त काम करता है, आज बड़े बड़े मुल्क देख लें जो सुपर पावर्स कहलाते हैं, उनमें से कौन है जो जाके गरीब मुल्कों की मदद ऐसे कर रहा हो कि चलो जी हम आपके कोई डैम बना देते हैं, हम आपके कोई मदद कर देते हैं, हम आपकी कोई आपके ऊपर कोई कर्जा है वो हम दे देते हैं, आप पिस रहे हैं बगैर मुआवजे के, तो कोई कुछ भी नहीं करता, कर्जे दे देंगे वैसे नहीं करेंगे, बगैर किसी किस्म की लालच के कोई भी नहीं कुछ करता, मगर इसने बगैर मुआवजे की किया, इससे पहले भी आपने कोई चीज देखी है इस सूरत के अंदर कि बगैर मुआवजे के कोई काम किसी ने किसी का किया, याद करें जी मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम के किस्से में आपने देखा कि खिजर अलैहिस्सलाम ने दीवार बनाई बगैर मुआवजे के, उन्होंने तो नहीं सोचा मुझे आगे कोई दे उजरत, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा ना तो आपने इनसे कुछ ले लेना था, उन्होंने नहीं कहा, तो यहां पे जुलकरनैन को भी देखे, इससे पता चलता है जो बंदा मोमिन होता है ना, जब वो किसी के ऊपर जुल्म होता देखता है तो ये नहीं लालच में, नहीं पहले मुझे इतना दोगे तो फिर मैं करूंगी, मुझे इसमें क्या मिलेगा, मेरा इसमें कितना कमीशन होगा, मेरी इसमें क्या, मुझे क्या फायदा इसमें में मिलेगा, अब इसको क्या फायदा मिलना था, इसे तो चले जाना था, उसने तो जाना था, उसको क्या था इस चीज से, खुद सोचे। लेकिन आप देखते हैं कि कितने डिफरेंट होते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले होते हैं, जो इंसाफ पसंद बादशाह होते हैं, जो इंसाफ पसंद हुक्मरान होते हैं, जिनका अल्लाह से एक कनेक्शन होता है, कितने डिफरेंट होते हैं। आज गैर मुस्लिमों तो छोड़ ही दें आप, अपने मुसलमान हुक्मरानों में कौन आपको नजर आता है ऐसे? मुसलमानों में भी तो बड़े बड़े दौलतमंद मुल्क हैं, कौन से आपको नजर आते हैं जो बगैर किसी लालच के, बगैर कोई फायदा अपना देखे हुए, बगैर किसी बदले की उम्मीद के काम करके दिखाएं जरा। अफजल करनैन जानता था उसके पास बहुत बड़ी फौज है, तो वो क्यों नहीं कहता कि भाई मेरी फौज ही कर देगी, इसलिए कि वो चाह रहा है कि तुम लोग भी काम करो। और इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि ये नहीं है कि बस सब बैठो और आप जी बैठ के देखें, आप तो गरीब लोग हैं आप बैठ के देखें, नहीं, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर रहा है कि नहीं आपको खड़ा होना चाहिए, आप अपनी मदद, आपके तहत आप मेरे साथ हेल्प करें इस चीज के अंदर। वो पता है ना, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने लिए कुछ ना करे, बस यही देखते रहना कि हाय कोई आके हमारा कर दे, हम तो कुछ ना करें, हम तो बस बैठ के देखते रहें, ये नहीं। तो उसने कहा आप लोग मेरी हेल्प करेंगे इसमें। और ये भी पता चलता है कि उसके पास नॉलेज कितना था, इल्म कितना था। इल्म था तो तभी उसने सोचा ना कि सद नहीं काफी होगी, रदम चाहिए। अब हमारे तो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, हमारा हाल ये है कि वो बनाने को कुछ कहेंगे ना, अगर कंस्ट्रक्शन का, ऐसे पुल, ऐसी सड़कें और ऐसी बिल्डिंग्स बना के देंगे जिसमें इतना नाकिस मटेरियल होगा अगले दिन ही गिर जाएंगे। बेचारे, कहीं देखा भी है बेचारे लोग जा रहे होते हैं पुल के ऊपर, उसके ऊपर गाड़ियां गिर रही, वो पुल ही ढह गया, सड़कें एक बारिश हुई वो गिर खत्म हो गए, इमारतें हैं तो वो गिरी पड़ी, उनको क्या, वो तो अपना बना के पैसे लिए और चले गए, ठीक है। और ये भी ऐसी कोई साध, कोई छोटी मोटी ऐसी बना के जान छुड़ा है, चला जाता हूं उसके बाद मुझे क्या, पीछे से मरते खपते रहे, और इनसे पैसे भी ले लो और डबल ट्रिपल कीमत करके लोगों को, इस वक्त तो इनकी जरूरत है। जब हम देखते हैं किसी की जरूरत होती है, कोई बेचारा पिस रहा है, कोई आके हमें बड़ा कह रहा है मेरी मदद कर दो, तो उस वक्त ही हम कहते हैं बस ये टाइम है कि बना लो जितने पैसे बनाने। जब हम देखते हैं मिसाल के तौर पर किसी बेचारे परेशान हाल है, उसको अपनी कोई चीज बेचनी पड़ जाती है, अल्लाह ताला माफ करे इस चीज से, कि ये भी गुनाह के उसके अंदर आ जाता है कि उसको अपनी चीज को बेचनी पड़ रही है, तो उसकी मजबूरी से फायदा उठा के उसको इतनी कम कीमत दी जाए, मतलब अपना वो घर बेच रहा है या वो अपनी गाड़ी बेच रहा है, वो किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया है, आपको पता है कि ये मुसीबत के अंदर है, अब ये इसको तो बेचनी ही बेचनी है, अब इसको कोई जो भी उसकी मुश्किल है, तो आप उसकी इतनी लो कीमत लगाएं ताकि मैं फायदा उठा लूं। इसकी गर्दन आई भी है इस वक्त एक उसके नीचे मुसीबत में, तो मैं इसी मुसीबत से, इसकी परेशानी से फायदा उठाऊं, ये भी बहुत ही बुरी बात है। इसके बारे में कोई हदीस भी है, मेरे सामने नहीं है तो मैं बता नहीं सकती। तो ये वक्त था कि ज़ुल्करनैन उनसे खराज भी लेता, उनको कहता तुम काम करो, ठीक है मेरी फौज आपके साथ काम करेगी, और छोटा मोटा बना के, कमजोर सी सद बना के, और अपना रास्ता भी लेता, ठीक है ना, यही हम लोगों के तरीके ना, मुसलमान तो ऐसा ही करते हैं ना, क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें माफ कर दे, फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर अजाब क्यों आते हैं। तो उसने उन उनसे ये कहा, और ये भी पता चलता है वो कितना खैरख्वाह बादशाह था, उसमें खुदा खौफी कितनी थी, क्योंकि जिसमें खुदा खौफी हो ना बस वही ये कर सकता है। और जिसमें इंसानियत की खैर ख्वाही हो कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मैंने इनकी मदद करनी है, उसका कोई फर्ज तो नहीं बनता था। हम नेकी करने लगते तो पहले क्या पूछते, मैं ही करूं क्या, कोई और क्यों नहीं कर लेता, किसी और को कह दे, खुद क्यों नहीं कर लेते। वो ये भी कह सकता ना, खुद क्यों नहीं कर लेते तुम, मैं तुम्हें बता के चला जाता हूँ, खुद करो ना, मुझे क्यों डाल रहे हो उसमें। हम फौरन कहते हैं, तो उसने कहा आतूनी जुबर अल हदीद, मेरे पास लेकर आओ लोहे के टुकड़े। अच्छा, अब ये आयत जो है ना, ये इंजीनियरिंग की आयत है कुरान में। सुभान अल्लाह, इतनी जबरदस्त बात है इसके अंदर इंजीनियरिंग के हवाले से, और इसे ईमान भी बढ़ता है इंसान का, कि हदीद के ब्लॉक्स लेकर आओ। इसका मतलब है उनकी जमीन में होगा लोहा, वहां पे काफी होगा, तो जो कह रहा है कि इतने ब्लॉक्स लेकर आओ, इतने ज्यादा लोहा तो आसान थोड़ी होता है। हत्ता सावा बैन सदफैन, यहां तक कि वो बराबर कर दिया उसने उसको, इन इस लोहे की जो ब्लॉक्स थे इनको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रख के दोनों किनारों के बराबर कर दिया। कौन से दोनों किनारे, वो जो पहाड़ों के दोनों किनारे थे ना, उनके बराबर कर दिया। यानी अब वो इतनी ऊंची तक ऊपर ले गया। अच्छा, अब सारा गैप फिल हो गया, लेकिन ये तो मजबूत तो नहीं है ना, तो गिर जाएंगे। तो अब इनको आप देखते हैं कि हम भी जब ईंटे रखते हैं तो उनके बीच में सीमेंट लगाते हैं ताकि वो उनको जोड़ दे। तो उसने लोहे के ये टुकड़े रखे, अब इनको जोड़ने के लिए क्या है, कौल अनफुहू, उसने कहा फूंक मारो इसके अंदर। तो पता चलता है कि यानी जो वो नहीं होता, जो आग दहकाने का जो आला होता है, जो ब्लोअर होता है, उसके अंदर फूंको ताकि वो आग भड़के वहां पे। तो अब आग जब इतनी भड़क गई, इतनी यानी वो कितनी सुभान अल्लाह बड़ी आग लगाई होगी कि वो आग ऊपर तक जा रही है। और हत्ता के इजा जालहु नारन, जब कर दिया उसको आग, किसको, इस लोहे को, ये लोहा जो है ना वो आग बन गया, यानी आग की तरह सुर्ख हो गया वो। कहते हैं ना हम आग हो गया ये लोग, वो सलाखें भी अगर आग के अंदर रखे तो कैसे रेड हॉट हो जाती हैं। तो फिर वो पिघलना शुरू हो गया, जो पिघला ना तो उसके जो बीच में गैप्स थे वो सारे फिल हो गए। वो जो जो आपको मैं बता रही हूँ, जहां पे आप सीमेंट लगाते हैं तो वो जो लोहे की चादरें हैं या ब्लॉक्स हैं, उनके दरमियान की जो जगह है, सुराख हैं, गैप्स हैं, वो सारे फिल हो गए उस पिघले हुए लोहे से। अब उसने कहा काला आतूनी, दो मुझको, उफरेग, मैं उंडेल लू आले ही तो इसके ऊपर तांबा, पिघला व तांबा। इससे आपको क्या पता चला, इतनी बात से बहुत सारी चीजें सोचने की हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं आप लोगों से पूछूं, आप मेरे सामने अगर बैठे होंगे, आप बताएं कि इससे आपको क्या पता चला, आतूनी से क्या पता चला, और कितरा से क्या पता चला, ओफ्रेग से क्या पता चला। आतुनी से पता चला कि देखें वो खुद भी काम कर रहा था। इट वॉज नॉट लाइक कि बस बस लोगों को कह रहा तुम ये करते जाओ, तुम वो करते जाओ, जैसे हुक्म चलाते जाना बस सारा वक्त। लेसन में देखेंगे, ये भी हमने सीखा कि वो कैसा लीडर था जो खुद आगे बढ़ के काम करता था। आपने देख जंगे आजाब में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नॉट ओनली जंगे आजाब, मस्जिद नबी की कंस्ट्रक्शन है, ये जहां पे भी आप देखते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ मिलके काम कर रहे हैं। सहाबा को करने देते थे आपको काम, वो तो कहते थे आप बैठे हम करेंगे। तो लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ के काम में हिस्सा लेते थे, तो आप एक नमूना दे रहे हैं कि जो लीडर है, जो बड़ा है, वो आगे बढ़ के खुद भी हिस्सा ले, खुद भी अपने हाथ से काम करे, वो सिर्फ हुक्म चलाने वाला ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पे भी हमें ये नहीं नजर आते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हो और सहाबा काम कर रहे हैं, हालांकि वो उनको काम करने में कुछ नहीं था, वो तो कहते थे आप बैठे, वो तो नहीं चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के काम करें, लेकिन आप फरमाते थे मुझे भी उतनी ही अजर की जरूरत है जितनी तुम्हें, खुद आगे बढ़ के करना। लेकिन आज के हम देख लें लीडरशिप हमारी कहीं पे भी देख लें, तो वो बस बॉस मान के बैठ जाते और बस उसके बाद आप बस हुक्म चलाना, ये अच्छा लगता है। काम तो दूसरे करें, हम क्यों काम करें, काम करने को तो अपने लिए आर समझते हैं, हम क्यों करें, ये करें ना। वो कह रहे हैं आ तू नहीं मुझे दो, मैं उंडेलता हूं इसपे मोल्टन कॉपर। सुभान अल्लाह। अच्छा कितरा से आपको क्या समझ आई? कॉपर आपने कभी देखा? कॉपर की फिनिश कितनी स्मूथ होती है ना, तो जब उस दीवार के ऊपर, लोहे की दीवार के ऊपर कॉपर डाला जाएगा, तो नंबर 1 ये कि वो और मजबूत हो गई, नंबर 2 ये कि वो स्मूथ हो गई बिल्कुल, यानी अब इसके ऊपर कोई चढ़ना चाहेगा तो चढ़ नहीं सकता क्योंकि वो स्लिपरी होगी, जिसको आप कहते हैं ग्लेज्ड, ग्लेज्ड हो गई। ठीक है, अब ग्लेज्ड चीज के ऊपर चढ़ना नामुमकिन है, कैसे चढ़ेंगे, फिसल जाएंगे। फमस्ताओ अयधारू मस्तताओ लहू नकबा, तो नहीं इस्तात हुई कि वो चढ़ सके उस पे, और ना ही वो ताकत रखते थे कि उसमें नकब लगा सके। अब मस्ताऊ और तताऊ के अंदर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, मैंने आपको बताया इनके मीनिंग आप बिल्कुल सेम लिख सकते हैं। तो फिर ये ता एक एडिशन हुआ, एक लेटर सिर्फ और ज्यादा आया, और जब एक लेटर भी ज्यादा आ जाए तो उसमें कुछ शिद्दत आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट। आप देखें कि एक दीवार है, उसमें सुराख करना ज्यादा मुश्किल होता है या उसके ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाना मुश्किल होता है? आप देखें कोई भी कंक्रीट की दीवार देख लें, किस क्या चीज ज्यादा मुश्किल होती है? उसमें सुराख करना ज्यादा मुश्किल है ना, तो वो उसके लिए आया मस्तताऊ, और चढ़ने के लिए आया मस्ताऊ। ब्यूटी ऑफ कुरान ना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप इंजॉय कर सकें इसकी ब्यूटी को, के देखें एक भी जरा सा डिफरेंट आ जाए तो क्या। लेकिन मैंने वैसे आपको बताया कि मीनिंग में कोई फर्क नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इज नॉट को आप इजंट कह दें, वी आर को वी आर कह दें, यू आर को यू आर कह दें, तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसको जरा शॉर्ट किया गया। मगर ये इसका एक आपको समझ आई, और दूसरी ये कि देखें अगर रेपिटिशन होती ना, मस्तताऊ अयज़ुरू मस्तताऊ लहू नकबा, तो ऑलवेज रेपिटिशन इंसान को कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जब बोलता है तो उस वर्ड को डिफरेंट करके बोलता है, कोई और वर्ड लेकर आता है, तो वो ब्यूटी होती है। अच्छा जब ये सारा काम मुकम्मल हो गया, सुभान अल्लाह, ये मैं आपको बात बता रही थी, तो उसने क्या कहा? देखो मैंने कितनी जबरदस्त दीवार बनाई है, देखो मेरा कारनामा, ये तो तुम्हें याद रहेगा, ये तो यादगार हो, और यहाँ पे अपने नाम की तख्ती भी लगा दे। और उस जमाने में तो कोई वो नहीं होती थी, वरना कोई अखबारों में भी आ जाए, कोई टीवी पे भी आए, ऐसा कुछ भी नहीं। अलहदा रहमतुम या रब्बी, इतना बड़ा कारनामा है कि आज तक सोचे वो दीवार खड़ी हुई है और वाकई ना उसके ऊपर कोई चढ़ सका ना उसमें कोई सुराख कर सका, लेकिन उसने इतने बड़े कारनामे को भी करके कोई शेखिया नहीं है, कोई बड़ाइयां नहीं है, कोई सेल्फ प्रेज नहीं है, इंसान अपनी तारीफें करता नहीं हटता ना फिर। हाजा रहमत तुम मेरे रोटी, मेरे रब की रहमत है, रब ने कराया है, रब की रहमत है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सका और ये दीवार बना सका। सुभान अल्लाह। जॉब जब स्टार्ट की तो क्या कहा, नोट करें, जॉब ये देखें आप इसके अंदर, जब जॉब स्टार्ट किया तो मा मक्कन्नी फी रब्बी खैरुन, और जब जॉब एंड किया तो क्या कहा, हाजा रहमतुन मिन रब्बी। शुरू में भी अल्लाह का नाम, आखिर में भी अल्लाह का नाम, ना करके कोई बड़ाई और ना शुरू करने से पहले अपने कोई कारनामों के ऊपर फखर। ठीक है, हमेशा आजजी, हमेशा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक, हमेशा अपने काम की निस्बत अल्लाह की तरफ लौटाना। और ये सिर्फ ऐसे ही बात नहीं है, वाकई जो भी काम इंसान करता है वो सिर्फ अल्लाह ही की तौफीक से हो सकता है, यकीन जाने। आप ना इसको आजमा के देखिएगा, कहने से बात नहीं, अब आजमा के देख लेना कभी भी कोई भी काम जो आप सोचते हैं कि मेरे दाएं हाथ का काम है, ये तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये तो मैं चुटकियों में कर लेती हूँ, ये तो देखना अभी मैं 2 मिनट में लगा के करूंगी, आप देखना कि कभी वो भी वक्त आता है कि वो काम करना तो क्या, आपका बिस्तर से नीचे पैर रखना भी मुश्किल होता है, कोई बीमार हो जाता है या कोई रिसोर्सेज ही नहीं रहते उस काम को करने के, या को हालात कैसे से कैसे हो जाते हैं और इंसान नहीं कर पाता उसी को, जिसको वो कहता था कि मैं तो बड़ी आसानी से कर लेता हूं। तो ये वाकई अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन ये रियलाइज बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उसने एक बड़ी आजजी का इजहार करते हुए, क्योंकि बड़ा आजजी दिखाने के लिए, बड़े अपने आप को नेक बनाने के लिए ये कह दिया, बस ये जी अल्लाह की रहमत है, आजा मिन फदली रब्बी, बस ये है। और फिर उसके बाद तख्ती तो ये लगा दी, आजा मिन फदली रब्बी घर के बाहर, लेकिन जब बात करें तो फिर तकब्बुर है, फिर तो अल्लाह का फजल नहीं नजर आता। ये नहीं है वाकई, जब भी इंसान कोई भी काम करता है, वो सिर्फ अल्लाह की रहमत, उसका फजल होता है उसके ऊपर कि वो उसको कर पाया, वरना तो एक सांस लेना भी हमारी अपनी ताकत नहीं है, तो काम कारनामे करना कौन सी का ताकत होगी। तो मेड बाय सो एंड सो, इसकी तो तख्ती लग सकती थी सी ना, मेड बाय ज़ुल्करनैन, इस पे तो लिखा जा सकता था ना, लेकिन नहीं। लेकिन जो लोग बड़े काम करते हैं ना, और उनके अंदर इखलास होता है, उनके कामों को अल्लाह जिंदा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कामों को वो कदरदानी देता है कि अब वो अगर खुद भी कोई इंसान कितनी भी कोशिश करके अपने नाम को जिंदा रखने की कोशिश करे, वो नहीं हो सकता इस तरह से अल्लाह ताला उसका। देखिए हम कुरान के अंदर आ गया, और क्या इससे बड़ी बात हो सकती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को बिल्ड किया, तो उसके बाद उनकी अल्लाह ताला ने कैसी कदरदानी की, रहती दुनिया तक उनके इस काम को अल्लाह ताला ने प्रिजर्व भी किया, उनके नाम को जिंदा भी रखा, और दुनिया उनका जिक्र खैर ही करती रही। कहीं वो भी वहां पे बोर्ड लगा देते जरा। हमें बहुत शौक होता है ना कि हम मस्जिद में जरा सी ईंट भी लगवा दिए तो मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ पे मेरी तख्ती लगवा दो, यहाँ पे लोगों को पता चल जाए कि मैंने किया है, नीचे अपना नाम लिखो, इस पे अपना नाम लिखो। इतना मैं मजबूर हो जाती हूँ, ये फ्लायर जब शुरू के अंदर बनते थे, मुझे लोगों को पता जो मेरे साथ काम करते थे, मैं कहती थी मेरा नाम ना लिखे इसके ऊपर, मजबूरी होती है, वरना दिल नहीं चाहता कि इसके ऊपर भी नाम लिखे जाए, क्योंकि ये नाम देखे ना इंसान के अंदर एक अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक बड़ाई का एहसास आ जाए कि मेरा नाम देखो लिखा जा रहा है। हम उन्होंने कहा नहीं जी, आप मजबूरी है, लोगों को बताना होता है कि कौन स्पीकर है, इसलिए नाम लिखना पड़ता है। लेकिन देखिए जो बड़े लोग होते हैं, वो कहीं अपने नामों के चर्चे पसंद नहीं करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो देखे सुभान अल्लाह, वो चींटी जो बोल ली, उसने कहा चींटी अपने बिल में चले जाओ, कहीं सुलेमान की आर्मी तुम्हें क्रश ना कर दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, देखो मेरी मेरी देखो, मैं तो इनकी जुबान भी समझ सकता हूँ, देखो चींटियां भी मेरे से डर के भाग रही, नहीं रब्बी औज़ेनी अनशकुर नेमत कल्लती अनअमता वाला वाली थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नियमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मेरे ऊपर की और मेरे वालदैन पर की। जो भी काम करते हैं, और चाहे चाहे छोटा भी काम हो, किसी को खाना खिलाने का भी काम हो, सूरह दहर में अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि वो लोगों को खाना खिलाते हैं, वो कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ा अम्वला शुकूरा, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, ना कोई बदला, ना कोई शुक्रिया कि तुम हमें थैंक यू भी बोलो, जजाकल्ला खैरन भी बोलो, हमें कोई दुआ ही दे दो, इस ये भी नहीं हम चाहते। हम तो फौरन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अच्छा इसने थैंक यू नहीं बोला मुझे, अच्छा इसका मैसेज नहीं आया, मैंने दावत पे बुलाया था इनको, खाना खिलाया था, मैसेज नहीं इन्होंने किया कि भाई थैंक यू आपने खाना खिलाया, मैंने इसको ये गिफ्ट दिया था, इसने थैंक यू क्यों नहीं बोला, अब हमने तो कुछ देना ही नहीं है। उसके बाद तो कोई थैंक यू का भी नहीं नोट आता, कभी इन्होंने कभी माना ही नहीं कि मैंने इनको कोई गिफ्ट दिया, हम तो इतनी हद तक देखते हैं। लेकिन जो लोग खालिस होते हैं ना अल्लाह के लिए, तो देखें फिर इखलास से कितना फर्क पड़ता है कि वो पीछे मुड़ के ही नहीं देखते कि शुक्रिया किसी ने किया या नहीं किया, किसी ने क्या कहा और किसने मेरी तारीफ की कि नहीं की, और मेरा बोर्ड यहाँ पे लगा कि नहीं लगा, इन्होंने मुझे कुछ माना कि नहीं माना। बढ़ बढ़ के हम बताते हैं ये मैंने ही शुरू किया था, ये मेरा ही था, ये मैंने ही बनवाई है, भूल ना आप जाए, ताकि आप कहीं अगर आपको भूल गया हो तो मैं याद दहानी करा देती हूँ कि ये मैंने ही शुरू तो मैंने ही किया था। अल्लाह अकबर, मैं आज यही, आज आप आगे भी देखेंगे इस सूरत के अंदर भी जिस चीज से डर रही हूँ कि अल्लाह पता नहीं हमारी तो कोई नेकी रह भी गई है अमालनामे में कि नहीं, कि हम तो ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि हम कितनी दफा अपनी बड़ाइयों के एहसास में हम इतने गुम हैं कि हम दफा ऐसी बातें बोल जाते हैं, कितनी दफा ऐसी चीजें कह जाते हैं, पता नहीं है कि कुछ रहा भी है कि नहीं रहा। قال هذا رحمت من ربي فاذا جاء وعد ربي, फिर जब आ जाएगा मेरे रब के वादे का वक्त, यानी कयामत का वक्त करीब आ जाएगा, जालहू दक्का, तो मेरा रब इसको रेजा रेजा कर देगा, यानी जो इतनी चाहे जितनी भी अपनी तरफ से मजबूत बना ले, लेकिन उसका तो एक ही हुक्म आना है तो ये क्रम्बल हो जाएगी, पीसेस में हो जाएगी। जा दुक्कत अल अर्दु दक्कन, दक्का आया ना वहां पे, दक्क के अंदर ही आपको कितनी शिद्दत महसूस होती है ना, कि इसके अंदर ही पता चलता है कि यानी बिल्कुल रेजा रेजा कर देगा इसको। वकाना वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच है, इससे उसका ईमान पता चलता है सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला की तरफ ही इस कारनामे को भी अल्लाह ही की तरफ उसने यानी वापस किया, अल्लाह ताला से ही मंसूब किया। और फिर आगे भी ये नहीं कहा मैंने ये ऐसी मजबूत दीवार बनाई है कोई माई का लाल इसको गिरा के दिखाए। जब कोई बड़ा कारनामा करता है इस तरह की बातें करते हैं ना, देखिए ना बड़ी चीजें जब कोई करता है तो फिर ऐसी बातें मुंह से निकलती ही हैं। वो कहता ये नहीं कहता कि कोई आके गिरा के दिखाए कोई कर, वो कहता जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा। अब इससे भी उसके इल्म का पता चलता है, जब ये इल्म आता है तो आजजी आती है, यहां से ये पता चला ना पिछली हमने किस्से में भी क्या देखा था, इल्म आता है तो आजजी आनी चाहिए। अब ये आजजी है उसकी, और उसको पता है कि रब का वादा है एक दिन कि सब खत्म हो जाना है, तो ये दीवार भी गिर जाएगी उस वक्त। अब एक तरीका था कहने का कौन इसको गिरा के दिखाए, कोई हो नहीं सकता जो इसको गिरा के दिखाए, कोई हो नहीं सकता जो इसको खत्म करके दिखाए। और दूसरा तरीका क्या, ये पता चलता है कि कितनी मजबूत होगी वो दीवार, कि उसने कहा कि जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो रेजा रेजा हो जाएगी। यानी अल्लाह ताला की पावर है, अल्लाह की कुदरत को भी जानता था। वकाना वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा तो सच्चा ही है। अब देख लेना, देखे उसने अपने रिसोर्सेस को इंसानियत की खिदमत में लगाया, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसको दूर करने में लगाया, सिर्फ अपनी शोशा और अपने आराम के लिए नहीं किया। अब असबाब हमारे पास भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उनको किस में लगाते हैं? क्या कभी हमारे कोई रिसोर्सेज यूज होते हैं कि किसी की परेशानी दूर हो जाए, कोई मुश्किल के अंदर है, कोई मुसीबत में है, वो हमारा कुछ भी नहीं लगता, वो हमारे हमारे काम भी नहीं आ सकता दोबारा, हमने शायद उसको कभी दोबारा मिलना भी नहीं है, जैसे जुलकरनैन ने बार बार थोड़ी इनके पास आते रहना। लेकिन क्या फिर हमारे मादी वसाइल या हमारे इल्मी वसाइल या हमारे पास जो भी काबिलियत है, चाहे वो पैसे की फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में, क्या वो दूसरों के लिए यूज होती है कि उनको कंफर्ट मिल जाए?